आइए अब जिक्र करते हैं, यहाँ नवंबर में दूसरा साउथ एशियन फेस्टिवल मुनाकिद हो रहा है उसका, जिसमें कई थिएटर ग्रुप भी हिस्सा दे रहे हैं और नौटंकी थिएटर के नाम से काम करने वाला ड्रामा ग्रुप उर्दू ड्रामा स्टेज कर रहा है। इस ग्रुप की तर्जुमान रीमा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, मैं SBS रेडियो के उर्दू प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में शामिल किया।
रीमा, हमारे सामईन को पहले तो ये बताइए कि ये जो साउथ एशियन फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है, इसका क्या मकसद है और इसमें जो नौटंकी ग्रुप एक ड्रामा कर रहा है, जरा उसके बारे में भी हमारे सामईन को आगाह कीजिएगा।
जी, नौटंकी थिएटर कंपनी जो है, मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। हम ये एक इंडिपेंडेंट थिएटर कंपनी है जो 8 साल पहले लगभग फॉर्म हुई थी, और ये हम मेन स्ट्रीम ड्रामा करते हैं ज्यादातर रिवरसाइड थिएटर पैरामेटा में, लेकिन हमारे ड्रामों की या हमारे प्रोग्राम्स की जो थीम है वो साउथ एशियन है। तो हम मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए ड्रामे करते हैं, लेकिन हमारी थीम्स जो हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज की होती हैं इसमें। तो हमने सन 2016 में एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल के नाम से, और इसका मकसद असल में ये था कि जो मुख्तलिफ साउथ एशियन कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कम्युनिटी हो गई, इंडिया की कम्युनिटी, इंडिया में बहुत सारी जुबानें मुख्तलिफ बोली जाती हैं, उनकी अपनी अपनी कम्युनिटीज हैं, बांग्लादेश हो गया, तो हमारा मकसद ये था इस फेस्टिवल का कि जो डिफरेंट जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी अपनी जुबानों में शॉर्ट ड्रामाज करें। तो ये फेस्टिवल पिछले साल हमने शुरू किया था और इस साल इसका दूसरा साल है, और हर साल हम इसमें 3 ड्रामे करते हैं, और इस साल भी हम इसमें 3 ड्रामे करें, जिसमें से 1 ड्रामा उर्दू जुबान में है, 1 सिंहलीज में है और 1 गुजराती में है। ये इसका बैकग्राउंड है।
तो क्या मुस्तकबिल में इसमें कुछ और जुबानों के ड्रामे भी शामिल करने का प्रोग्राम है?
जी हाँ रेहान, हमारा मकसद ये है कि हम हर जो सारी बहुत सारी जुबानें जो बोली जाती हैं हमारे खत्ते में, उसमें से हम जिस तरह पिछले साल जब हमने शुरू किया था ये फेस्टिवल, तो हमने बंगाली में 1 ड्रामा किया था, 1 मराठी में किया था और 1 तमिल में किया था, और इस साल हम 1 सिनेलीज में कर रहे हैं और गुजराती और उर्दू में करें। तो हर साल हमारा यही है, इसका प्रोग्राम है हमारा कि हम मुख्तलिफ जुबानों को प्रमोट करें और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उन सब लैंग्वेजेस के ड्रामास दिखाए जाएं, ताकि इंटरेक्शन हो आपस में, कल्चरल इंटरेक्शन हो उन कम्युनिटीज की।
जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये दूसरा साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल है और इसमें और भी ग्रुप्स हिस्सा ले रहे हैं, ड्रामे दूसरी जबानों के भी हैं, इसमें उर्दू का भी ड्रामा हो रहा है, तो ये जो उर्दू का ड्रामा हो रहा है इसके बारे में हम अभी बात तो करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा आप हमें ये बता दीजिए कि ये ड्रामा किन तारीखों को हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और इसके लिए किससे रब्ता किया जा सकता है?
जी बिल्कुल, ये 9 और 10 नवंबर को हो रहा है रिवर साइड पैरामेटा में, और आप रिवर साइड की वेबसाइट पे जाएं या रिवर साइड थिएटर को कॉल करके टिकट्स बुक कर सकते हैं, और ये 7:45 PM पे दोनों दिनों को तीनों ड्रामे हम दिखाएंगे, तीनों ड्रामे दोनों दिन दिखाए जाएंगे।
अच्छा, हमारे सामाइन को दिलचस्पी एक खास ड्रामे से होगी जो उर्दू में, उर्दू का ड्रामा है, और हमारे सामाइन उसके बारे में कुछ और भी तजस्सुस रखते हैं, क्योंकि इसमें जो एक बड़ा नाम आ रहा है वो मोहतरमा उज़्मा गिलानी साहिबा का आ रहा है, और न सिर्फ फनकारा के तौर पर या अदाकारा के तौर के ऊपर वो इस ड्रामे में अपने जौहर दिखाएंगी, बल्कि इस दफा उन्होंने ये ड्रामा लिखा भी है और इसकी हिदायतकारी भी दे रही हैं वो खुद। तो आइए उनसे जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ये तजुर्बा कैसा रहा और ये ड्रामा हकीकत में किस पस मंजर में लिखा गया है।
अस्सलाम वालेकुम
उज़्मा गिलानी साहिबा, मैं SBS के तमाम सामाइन की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ।
मैं आपको और अपने सारे सुनने वालों, दोस्तों, बहन भाई, उन सबको मैं सलाम करती हूँ, और सबसे पहले तो मैं चाहूंगी बाद में करूंगी बात ड्रामे की, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि ये 2 दिन जो हैं ये मैं अपने जितने भी यहाँ पर मेरे उर्दू प्रोग्राम सुनने वाले हैं मैं उनको चाहूंगी कि वो जरूर जरूर आए, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ, सच्ची मैं कह रही हूँ, और बिल्कुल सब लोग आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जितने ज्यादा मुझे शक्लें नजर आएंगी उतने ज्यादा मुझे खुशी होगी। खैर बाहर
हमें उम्मीद है कि आपका नाम का जादू भी ऐसा है कि इसकी वजह से भी और जो कुछ इस ड्रामे में हमने देखने को मिलेगा उसकी वजह से भी लोग बड़ी तादाद में वहां आएंगे। उज्मा गिलानी साहब जरा ये बताइएगा, ये जहां आरा के तीन रूप इस ड्रामे का नाम है और कुछ बड़ा तारीखी सा और रूमानी सा कुछ नाम भी लगता है, तो जरा पस मंजर बताइएगा कि इस ड्रामे का है क्या मरकजी थीम?
रेहान, आप जानते हैं कि हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ दौर में इंसान की एक पर्सनैलिटी जो होती है वो डिवेलप होती है और कुछ वो उन हालात के तहत उनकी जिंदगी गुजरती है। एक जवानी का दौर होता है, एक मिडिल एज का दौर होता है, एक बुढ़ापे का दौर होता है। तो ये कहानी जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है या पर्सपेक्टिव जो है वो एक बूढ़ी औरत का है जिसने अपने जमाने, मैं नहीं बताऊंगी उसका प्रोफेशन क्या था वो हो जाएगा, अपने जमाने में वो बहुत कदावर शख्सियत थी और बहुत ज्यादा उसका शोहरत थी, उसके पास दौलत थी, उसके पास नाम था बहुत ज्यादा, और अब उसका डाउनफॉल होके और वो बिल्कुल एक छोटी सी कुटिया के अंदर एक रह रही है और तने तना है। और वो अब विजुलाइज करती है कि वो जो दौर था, जो इनिशियल दौर था, उसके अंदर क्या क्या उसके किन किन हालात से वो गुजरी, फिर उसके बाद जो बीच का दौर आया तो किन किन हालात से गुजरी, और आखिर में जब ये जो औरत है ये डरी हुई है बहुत ज्यादा कि मेरे जो बहुत ज्यादा ऐसे कोई पॉजिटिव उसकी जिंदगी में हालात ऐसे नहीं रहे जिनको जिनकी मेमोरीज जो हो ना सिवाय इसके शोहरत थी उसको, बाकी वो शोहरत की मंजिलों पर किस तरह पहुंची, क्या क्या उसके साथ गुजरा, किस तरह से उसके हालात रहे, वो मैं रिवील नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि वो यही है कहानी। और एक औरत है के तीन रूप है, ये औरत जो है ये सोच रही है उन तीनों के बारे में, उन दो रूप के बारे में, ये तो है ना जो बूढ़ी औरत है। तो ये है कुछ उसके अंदर खासा बड़ा जरा सा मुश्किल था इसको लिखना। रेहान आप तो जानते हैं, आप तो खुद राइटर हैं कि इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं या सिंबॉलिक जो होते हैं उनको लिखना काफी मुश्किल होता है, और खास तौर पे फिर ऐसी जबान हो कि जब वहाँ पे हर जबान बोलने वाले लोग होंगे तो विजुअली वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बावजूद इसके कि उर्दू जबान कई लोगों को ना आती हो, शायद ना समझ में आती हो, लेकिन वो उसके पूरे उसके जो इमोशन हैं उस उन औरतों के उनसे वो समझ सकें कि ये क्या हो रहा है।
जी जरूर, और कई साल पहले जब आपसे मैंने अपना पहला इंटरव्यू आपसे लिया था तो उस वक्त मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप अब माशाल्लाह इतनी तजुर्बाकार फनकारा हैं, आप हिदायतकारी के मैदान में कदम क्यों नहीं रखती, तो अब इतने अरसे बाद आपने इस दश्त में कदम रखा है तो ये हिदायतकारी का तजुर्बा कैसा रहा, खासतौर पर स्टेज और थिएटर की हिदायतकारी और भी ज्यादा मुश्किल काम होता है, तो ये तजुर्बा कैसा रहा आपका?
रेहान सच्ची पूछिए तो ये तो सिर्फ यहाँ पे क्योंकि जरा से हमारी सारी जो सारे जो वो हैं ये टैलेंट जो है ये जरा सा लिमिटेड है, तो ये मुझे मजबूरी को करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं हिदायतकार अपने आप को ना कभी कहती हूँ और ना मैं बनना चाहती हूँ। जब मुझसे कोई कहता है जैसे आपने भी कहा था तो मैं ये कहती हूँ कि मैं 50 साल से एक्टिंग में हूँ, मैं वही काम पूरा सीख लूँ तो बहुत गनीमत है, ना कि मैं एक और उसमें चली जाऊँ शोबे में। तो ये मैंने बहुत कोशिश की है, होमवर्क किया है, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह से मैंने इसको स्टडी कर रही हूँ सारी सिचुएशन को, एक दफ़ा लिखती हूँ फिर दोबारा लिखती हूँ, फिर एक दफ़ा मूव्स बनाती हूँ फिर दोबारा मूव्स बनाती हूँ, म्यूजिक का सिलेक्शन होता है। एंड रीमा को मैं कहूँगी कि रीमा मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है क्योंकि ये थिएटर से बहुत वाबस्ता रही है, मैं तो थिएटर से बहुत कम, मतलब एंकरिंग मैंने की है या एक आध मैंने ड्रामा किया है, लेकिन ये जो फुल फ्लेज जो वहाँ पाकिस्तान में आप जिसे कह सकते हैं थिएटर वो मैंने नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का थिएटर बिल्कुल ऐसा नहीं है अभी तक कि उसके साथ अपने आप को एसोसिएट किया जाए। थोड़े से छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स हैं जिसमें राहत आजमी का या यास्मीन इस्माइल थी वो लोग थे, तो वो अजोका थिएटर, तो ये ऐसे थे, लेकिन ये कि ये बिल्कुल इसी तरह से है कि इनको बहुत ज्यादा पजीराई यूं नहीं मिली, ये बस जो जो पसंद जो जो इस किस्म के इनके हम आहंगी थी जिन लोगों की वो देखा करते थे, अदरवाइज जो जनरल थिएटर है वो तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है बिल्कुल, वो झुकते हैं और मजाक है और हंसी है सिर्फ वो पैसा बनाने की। अब अनवर मकसूद साहब ने वहाँ पे थिएटर को प्रमोट करना शुरू किया है, बहुत मानी खेज और आप जानते हैं अनवर साहब को, उन्होंने वो करना शुरू किया है, तो कुछ थोड़ा थिएटर की शक्ल कुछ नजर आ रही है, तो इसलिए मैंने कभी थिएटर नहीं किया वहां पर, क्योंकि मैं अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहती थी उस सर्टन मिजाज के साथ। इसलिए मैं टीवी और रेडियो पर, इसीलिए मैं फिल्म में भी नहीं गई कि मैं उस मिजाज के साथ अपने आप को नहीं करना चाहती थी। तो रेडियो और टीवी दो ऐसे मुझको मीडियम नजर आए जिसमें मुझे, मैं समझती थी कि मैं अपने वकार के साथ और अपनी इज्जत के साथ मैं अपना टैलेंट जो है वो दिखा पाऊंगी।
और मेरे ख्याल में इसी की वजह ये है कि इस वक्त भी आप अपने पसंदीदा एक मीडियम ही के जरिए अपने सामईन से बात कर रही हैं, अपने चाहने वालों से बात कर रही हैं। अच्छा, आपने बहुत अरसे पहले कुछ कहानियां भी लिखी थी, फिर आपकी याददाश्तों पर मबनी किताब भी सामने आई, मगर अब आपने खुद इस ड्रामे को तहरीर किया है, तो इसका खमीर कहाँ से उठा, इस ड्रामे की कहानी का?
रेहान, मैं बहुत ज्यादा तो अपने आप को नहीं कहती कि मैं प्ले राइट है या मेरे इसमें उसमें, लेकिन टेलीविजन के लिए मैं लिख चुकी हूँ एक दो ड्रामे पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, लाहौर से मेरे जितना शुरू हुए हैं, एक आध लिखा हुआ भी रखा हुआ है जिसको टेलीविजन वाले जो हैं वो अब नहीं, उसको जरा सा थोड़ा बोल्ड है वो, तो वो कहते हैं कि जी ये फिल्म के हवाले से होगा। असल में रियलिटी ट्रूथ जो होता है, सच जो होता है, वो थोड़ा सा कड़वा होता है ना, और हमारे यहाँ थोड़ा सा मिजाज ये है कि हम सच को छुपा के रखते हैं, और जो वो चढ़ा के ना उसके ऊपर गिलास चढ़ा के और शुगर कोटेड चीजें हम दिखाते हैं, नहीं तो हमारे सच जो है हमारे मुल्क में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो या जो भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन ये कंट्रीज हैं, यहाँ पे सच जो है वो बड़े कड़वे हैं, तो कड़वे सच को हम लोग नहीं लेते। तो मैंने लिखा तो है ड्रामे टीवी के लिए, अच्छा फिर मैं रेडियो के लिए बहुत लिखा करती थी, एक सुबह का प्रोग्राम होता था सात रंग के नाम से, जो कि जैसे होता है ब्रेकफास्ट शो जैसे होता है यहाँ पे वेस्ट में, उस तरह से वो होता था, वो मैं लिखा करती थी, अपने आप को लिखती थी मैं, उनके जो लिखे उनके राइटर्स जो थे वो तो छोटे छोटे चुटकुले लिख के दे दिया करते थे, मैं कहती ये चुटकुलों का प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीजें होनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो मैं लिखा करती थी। तो कुछ कुछ तो किया है काम, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का काम है कि आप माशाल्लाह बाकायदा राइटर्स हैं, वैसे मैं अपने आप को कभी नहीं शुमार कर सकती।
बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा गिलानी साहिबा, और हमें उम्मीद है कि हमारे सामने ये जहां आरा के तीन रूप देखने के लिए ज़रूर पहुंचेंगे और इस ड्रामे को एंजॉय भी करेंगे और आपके फ़न को सराहेंगे भी। आपका और रीमा का हमारे सामने से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
जी शुक्रिया, और मैं ये कह रही थी कि जहारा की तीन बुक में एक रूप उस्मा गिलानी भी कर रही है, तो वो उसी को देखने आइएगा।
जी जी, मैंने शुरू में ये तारुफ में बताया था कि इसमें आप अपने
आपको कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया ऑन एयर आपकी दावत देने का, और इंशाल्लाह अगर वक्त इजाजत दी तो मैं आपके फन का वैसे भी मद्दा हूँ, हमारे दूसरे सामईन भी आपके बहुत मद्दा हैं, और इंशाल्लाह हम सब आपको सराहने के लिए मौजूद रहेंगे।
मैं सबका इंतजार करूंगी।
बहुत शुक्रिया
शुक्रिया। अल्लाह।
साउथ ईस्ट एशियन ड्रामा फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है, इस सिलसिले में नौटंकी थिएटर के ड्रामे के बारे में अभी आप बातचीत सुन रहे थे।